ओम शांति।
स्पष्ट वक्ता, सत्यतावादी, सादगी की मूर्ति, निर्भयता का प्रतीक, ऐसे आदरणीय सुषमा दीदी जी का हम बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं। विधि विधाता परमात्मा को कहा जाता है और वो विधाता संगम युग पर जब आते हैं तो हमको श्रेष्ठ कर्म करने की, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की, श्रेष्ठ सोचने की विधि सिखाते हैं और विधि के द्वारा ही सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कई आत्माएं परमात्मा के डायरेक्ट सिखाई हुई विधि को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते। तो आदरणीय सूक्ष्मा दीदी जी के जैसे महारथी आत्माएं हैं जो हमको बड़े सरलता से, सहजता से विधि के द्वारा सर्व सिद्धियां कैसे प्राप्त करनी है इस विषय पर समझाने के लिए आए हैं। दीदी जी का परिचय इस तरह से है, बहुत कम आत्मा यज्ञ में ऐसी है जिन्होंने साकार मामा बाबा के पालना का सौभाग्य ड्रामा में प्राप्त किया है, उसमें से आप एक है। साकार मामा बाबा के पालना में पली है, बाल्यावस्था में ही आपको अंबाला से ज्ञान प्राप्त हुआ, 1963 में बाबा से मिले और बाबा की पालना तथा रूहानी व्यक्तित्व की अमीर छाप आप पर पड़ी, 1971 से सेवा के क्षेत्र में आपने अपना जीवन समर्पित करके सेवा के विस्तार में बहुत ही सफलता पाई, देश विदेश में सेवाएं दी, लाखों का जीवन खुशहाल किया। वर्तमान समय पिंग सिटी जयपुर के सब जोन इंचार्ज है, ब्रह्मा कुमारीज मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर है, राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के बिजनेस विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं। ज्ञान योग धारणा सेवा चारों विषय में मजबूत बनना, रहना और बनाना यही आपका उद्देश्य है। तो बहुत सुंदर विषय है और बहुत आवश्यक ये बातें हैं, यथार्थ विधि द्वारा सिद्धि को कैसे प्राप्त करें। तो हम सभी आदरणीय सुषमा दीदी जी को नम्र निवेदन करते हैं कि आप हमें इन बातों से अवगत कराए। ओम शांति।
थैंक यू। ओम शांति। संगम युग की सुहावनी घड़ियों में बहुत थोड़ी सी आत्माएं पिता परमात्मा को पहचानती हैं और उनसे अपना संबंध जोड़कर जन्म जन्मांतर के लिए अपना भाग्य बना लेती हैं। उन थोड़ी सी आत्माओं में से आप और हम सब भी वो विशेष आत्माएं हैं जिन्होंने बाबा को पहचाना और पहचान कर ईश्वरीय सेवा के प्रति अपना संकल्प, समय, स्वास सब समर्पित कर दिया। तो आप सब भाग्यवान आत्माएं हैं ऐसा महसूस करते हैं? महसूस करते हैं? तो आप सब बाबा भाग्य विधाता के बच्चों को भाग्यवान बनने की बहुत 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 बधाई। आज का दिन विशेष है, पुराने वर्ष की 30 तारीख 30 दिसंबर कल होगा आखिरी दिन। कल हम सब मिलेंगे किससे? उस सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के भंडार, विश्व रचयिता पिता परमात्मा से, जो स्वयं सर्वशक्तिवान है, जो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं, जो हम सबके भाग्य विधाता हैं, ऐसे दुनिया वाले आत्माओं के लिए तो कहते हैं ये महान आत्मा है, महान शक्ति है, लेकिन हमारा मीठा बाबा कौन? कौन? महान शक्ति, सर्वशक्तिवान, और हम बाबा के बच्चे कल उस परम शक्ति के साथ मिलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। विचार कीजिए, अपने घर में कोई मेहमान आते हैं, अपने ही भाई बहन मामा चाचा आते हैं, और अगर कोई विशेष ही मेहमान आना हो तो दोनों की तैयारी में अंतर रहता है। कोई विशेष आने वाला हो, कहते नहीं ये भी ठीक होना चाहिए, ये भी, सब एकदम नया नया नया। हम किससे मिलने आए हैं, किससे हमको मिलना है, हमने अपने आप को तैयार किया है? या बस रूटीन में हर साल आते हैं, बाबा से मिलते हैं, इस बार भी बाबा से मिलेंगे, बहाना बाबा है, मिलते हम एक दूसरे से हैं। अपने अपने स्थान पर तो सबसे मिल नहीं सकते हैं, चलो मधुबन आते हैं, सबसे मिल लेते हैं, मधुबन वालों से मिल लेते हैं, और भी इधर उधर के भाई बहने आए होते हैं उनसे भी मिल लेते हैं, इस चीज से खुश होते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य केवल आत्माओं से मिलना नहीं है, हमारा लक्ष्य है उस परम सत्ता से, उस विश्व रचयिता से, उस विश्व पिता, विश्व सतगुरु, सत्य टीचर से मिलना है। तो हमें कितनी तैयारी करनी होगी। तो कितने ना हम सब सौभाग्यशाली हैं जो विशेष पुरुषोत्तम संगम युग पर दो, इस पुरानी दुनिया के दो पुराने और नए साल के संगम पर बाबा के सामने कल बैठे हुए होंगे। तो आज जो विषय है विधि और सहज योग। विधि क्या है? क्योंकि विधि से ही सिद्धि है। हमारी सिद्धियां कोई वो दुनिया वालों की तरह नहीं है, किसी ने कोई सिद्धि ले ली, कोई पानी पर भी चल लेते हैं, कोई कुछ उल्टा सीधा भी कर लेते हैं, जादू टोना भी कर देते हैं, इच्छाएं पूरी कर देते हैं, वरदान छोटे मोटे दुनिया के, आपकी नौकरी लग जाएगी, बच्चा होगा। हम वो वाले सिद्धि वाले नहीं हैं। हम तो कौन सी सिद्धि वाले हैं? जन्म जन्मांतर के लिए अपना भाग्य बनाने वाले और सबका भाग्य के निर्माता हैं हम, नए विश्व के रचयिता हैं। तो आप सोचिए हमारी विधि कितनी श्रेष्ठ, कितनी ऊंची विधि होगी। क्या हम सबने इस बात को समझा है? हम क्यों योग लगा रहे हैं? हम क्यों दूर दूर से भागे भागे बाबा से मिलने आते हैं? यहां तक अब तो साकार में बाबा नहीं, अव्यक्त बाबा का पार्ट भी परिवर्तन हो गया, लेकिन जब हम यहां आकर इस हॉल में बैठते हैं, कल भी आप अनुभव करेंगे, ऐसा लगता ही नहीं है। सब एकदम लगन में मगन, और हर बाबा का बच्चा महसूस करता है जैसे बाबा मुझ आत्मा में शक्ति भर रहा है। तो ये कार्य किसका है? उस सर्वशक्तिवान ईश्वर पिता का है। तो जो कही गई है बात विधि से सिद्धि, तो पहली विधि क्या मुझे निश्चय है? पूछिए अपने आप से, क्या मुझे निश्चय है? ये उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा का कार्य चल रहा है? या ठीक है, दुनिया में बहुत सी संस्थाएं हैं, ये भी एक संस्था है, यहां भी बहुत लोग आते हैं, बहुत चले जाते हैं, हम किस लाइन में हैं? कई बार जब बाबा आगे भी अव्यक्त में आते थे, कई नए नए लोग आते थे बाबा से मिलने के लिए, पुरानों के साथ नए भी आ जाते थे। एक बार कोई नया व्यक्ति था वीआईपी, मैंने उससे पूछा आपको क्या अनुभव हुआ, आप बाबा से कल मिले, आपने बाबा के मधुर महावाक्य सुने, शक्ति ली, आपको क्या लगा सचमुच ये ईश्वरीय कार्य परमात्म कार्य चल रहा है? तो प्रश्न सुनकर एक सेकंड जरा सा रुका और फिर बोला, बहन जी मैं ये तो नहीं समझता हूं कि परमात्मा स्वयं आते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं हां कोई महान शक्ति तो जरूर है। ये तो नए लोगों की भाषा, नए लोगों की अनुभूति है कि इतने हजारों भाई बहन बैठे हुए हैं, हॉल फुल है, समझते हैं यहां इतनी साइलेंस है, हां कोई शक्ति तो जरूर है। अब आप ही बताइए, जब मैं ये समझती हूं कि कोई शक्ति तो है तो मुझे क्या प्राप्ति होगी? और मैं समझती हूं शक्ति नहीं, ये तो वो शक्ति है जो मुझ आत्मा का अविनाशी पिता है, ये वो शक्ति है जो भाग्य विधाता है, ये वो शक्ति है जो पूरे विश्व का रचयिता है। मैं उस सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु की संतान हूं और उससे अपना भाग्य बनाने आई हूं। तो पहली विधि क्या मुझे निश्चय है? अब अगर मैं पूछूं किस किस को निश्चय है, ये बाबा का ज्ञान है, तो सब हाथ उठाएंगे। लेकिन अपने आप से पूछिए, अंदर से पूछिए, सचमुच वो सर्वशक्तिवान मुझ आत्मा का पिता वो मुझे मिलने आया है। भक्ति में तो लोग क्या कर रहे थे, भगवान को बुला रहे थे, हे भगवान आओ, उसको ढूंढने के लिए दर दर जाते हैं। हम ढूंढने के लिए नहीं आए हैं, हम किस लिए आए हैं? हम तो उससे मिलने आए हैं। निश्चय है कि वो आया है और वो आकर के हमें राह दिखा रहा है। दोनों में अंतर है। तो मेरा निश्चय किस लेवल का है? अगर हम चाहते हैं उस वरदाता से, भाग्य विधाता से शक्तियां प्राप्त करें, और जिसको ये अनुभूति होगी कि सचमुच वो सर्वशक्तिवान आया है मुझे मिलने, एक सेकंड आप विचार करके देखिए, जहां भी बैठे हैं थोड़ा सीधा होके बैठिए, क्योंकि आज का ये जो विषय है ये अनुभव का विषय है। अलर्ट होके बैठिए और एक सेकंड अपने भीतर जाइए और स्वयं से पूछिए, क्या सचमुच मैं सर्वशक्तिवान उस परम सत्ता से, उस विश्व रचयिता से, उस मात पिता से मिलन मनाने आई हूं या आया हूं? अगर किसी वीआईपी को आना हो, हमें मालूम है वो इस गेट से आएगा, तो हमारी नजर कहां लगी रहती है? बैठेंगे कहेंगे टाइम तो हो गया, आया नहीं क्या अभी तक, देखना जरा बाहर कोई आया, कोई गाड़ी की आवाज आएगी तो फट से देखेंगे, अरे उसकी गाड़ी आई है क्या? कितना इंतजार, कितनी मन में उत्सुकता होती है। उस समय कोई भी आपस में बात नहीं करता है, कोई कहेगा ना कि अरे भाई ये काम था, आप मेरा ये कहेगा अभी तो छोड़ो, अभी तो हम उसको रिसीव करने खड़े हुए, बाद में बात करना, कहते हैं ना ऐसे। और मुझसे मिलने कल भगवान सर्वशक्तिवान स्वयं आएगा, किस किस के अंदर ऐसी उत्सुकता है? चाहे हम पुराने हैं, नए हैं, किसके अंदर इतनी उत्सुकता है? अरे छोड़ो ना बातें, कल बाबा मेरे से मिलने आ रहा है, मुझे बस बाबा से। तो हमारी लौ एकदम लग जाएगी। विधि ये है, निश्चय पक्का हो, लौ उसके साथ लगी हुई हो। सिद्धि की ना सोचो, सिद्धि तो अपने आप होगी। वृक्ष लगा है आम का, सीजन आने पे आम लगेगा ही लगेगा, उसको कोई लगाना थोड़ी होता है, अपने आप लगता है। कोई भी वृक्ष हो, आम का हो, केले का हो, सेब का हो, कोई भी फल का हो, अपने आप फल लगता है। मेहनत पौधा लगाने में, पेड़ लगाने में है। मैंने अपने अंदर क्या ये लगन का पौधा अच्छी तरह से लगाया है? अगर पूछेंगे आपको है लगन, कहेंगे बहन जी इतने सालों से चल रहे हैं, फिर क्यों चल रहे हैं? प्रश्न ये नहीं है क्यों चल रहे हैं, प्रश्न ये है क्या सचमुच हमारे अंदर इतनी उत्सुकता है, हाँ मैं कल बाबा से मिलूंगी, बाबा स्वयं आएंगे, वरदाता मुझे वरदान देंगे, मुझ आत्मा को कौन सा वरदान मिलेगा, या मुझ आत्मा को क्या वरदान लेना है? ऐसे नहीं बाबा मेरी नौकरी लग जाए, बाबा मेरा धंधा आजकल ठीक नहीं चल रहा है, बाबा मेरा धंधा ठीक चले तो मैं यज्ञ में इतना करूंगा। अरे ये तो मनुष्य करता है ऐसे काम, आप मेरा ये काम कर दीजिए मैं इतना दूंगी। मनुष्य रिश्वत लेता है, भगवान रिश्वत लेता है क्या? हम उसको कहेंगे बाबा मेरी दुकान मेरा धंधा अच्छा चले, मैं बस ब्रह्मा भोजन कराऊंगी, राइट? ये राइट है या नहीं? बहुत से भाई बहन ऐसे करते हैं, कुछ हो जाता है काम उनका, कहते दीदी हमने संकल्प किया था ये काम हो जाए तो मैं ब्रह्मा भोजन कराऊंगा या कराऊंगी। आप कराइए या ना कराइए, भगवान रिश्वत लेके काम नहीं करता है। भगवान कैसे काम करता है, किसका काम करता है? भक्ति की आप कहानियां सुन लीजिए, ऐसे ऐसे भक्त हुए मीरा जैसे, वो लगन में मगन है, भगवान सोचे उसको क्या करना है, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो दुनियादारी सब छोड़ दी, दुनिया की इच्छाएं। मीरा तो रॉयल कुल की थी ना, महारानी थी, वो महलों का सुख सब छोड़ के आ गई। और हम क्या कर रहे हैं आज की तारीख तक भी? हम तो दुनिया की चीजें बटोरने में लगे हुए हैं, बुरा नहीं मानना, ये राइट है या रॉन्ग है, क्या विचार है? राइट है, राइट है तो हाथ उठाओ, राइट है ना? दुनिया की चीजें बटोर रहे हैं, सर्दी का मौसम है, अभी कोई एक अच्छा सा स्वेटर कोई भाई बहन, अरे तुमने कहां से लिया है मेरे को भी दिलाओ। छोटी छोटी चीजों में हमारा ध्यान जाता है। आए हैं हम बाबा से मिलने, ये भाई या ये बहन तो देखो मौन में है, तीन दिन से मधुबन में आए हैं, लेकिन जब से आए हैं मौन में है। ये चीज हमें अट्रैक्ट नहीं करती है, और कहेंगे कि अच्छा चलो आप अभी तक रहे या ना रहे, आज और कल का दिन मौन में रहिए। पहला प्रश्न भाई बहन पूछते हैं, बहन जी अगर किसी का फोन आ जाए तो क्या करें? आप ही बताइए क्या करें। ये तो हमारे दिल की लगन है ना, फोन आ जाए कुछ भी हो जाए, जो हमारे बहुत नियर एंड डियर है उनको बता दीजिए अब मैं दो दिन मौन में हूं बस। लेकिन मौन में रह के प्रभु प्रेम में लीन रहे, बाबा के महावाक्य पढ़ें, लिखें। खाली बैठना नहीं है कि मैं बाबा के कमरे में बैठ गई और फिर वहां बैठ के थोड़ी देर तो अच्छे से बैठी, फिर थोड़ी देर बाद फिर कहते 2 घंटा योग किया, 2 मिनट बैठे बस, लेकिन ऐसा बैठे अलर्ट होके, बाबा मुझे शक्तियां दे रहे हैं और मैं सारे विश्व में, खाली लेना नहीं है, जब तक हम ले रहे हैं हम योगी नहीं है। विश्व कल्याणकारी बाबा ने मुझे भी मास्टर विश्व कल्याणकारी बनाया है, मैं शक्तियां ले रही हूं और पूरे विश्व को दे रही हूं, वाइब्रेशंस फैला रही हूं। देने का कार्य साथ साथ है, हमारा योग कोई वो भक्ति वाली बात नहीं है, राम 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 माला नहीं जपनी है, लेकिन बस अलर्ट होकर बैठे हैं और सारे विश्व को योगदान दे। आप देखिए मम्मा बाबा का चित्र देखिए, मम्मा बाबा कैसे बैठे हैं, दादियों को हमने देखा, दादियां योग में कैसे बैठती थी, एकदम ऐसा सीधा, और हम कैसे बैठते हैं। पहली बात तो नीचे बैठ ही नहीं सकते हैं, फिर सोफे पे बैठ गए तो सहज योग तो बाबा ने हमें सिखाया है, पर सहज का अर्थ ये नहीं है। भौतिक रूप से, स्थूल रूप से बाबा ने हमें सब सहज किया है, हमें घर बार नहीं छोड़ना है, दुनिया नहीं छोड़नी है, लेकिन अपनी जो आंतरिक स्मृति और वृत्ति है उसको बदलना है। क्या बाबा ने जो बताया है वो हमने केवल सुना या उसको मन से स्वीकार भी किया? पहला स्टेप है सुनना। अभी भी आप सुन रहे हैं, कहेंगे बहन जी ने बहुत अच्छी बात बताई, वो तो ठीक है। फिर दूसरा स्टेप है मानना, स्वीकार करना। क्या मैंने स्वीकार किया कि ये जो बात बताई जा रही है, स्वीकार करना माना उसको प्रैक्टिकल में ले आना। तो जो बाबा कह रहा है मैं उसको प्रैक्टिकल में ला रही हूं, सुना, स्वीकार किया, माना, और फिर थर्ड स्टेप है चलना, फॉलो करना। बाबा हमें कहते हैं बच्चे 8 घंटा योग करो, हम इसको आसान समझते हैं या मुश्किल? जो आसान समझते हैं वो हाथ उठाओ, और जो करते हैं 8 घंटा वो हाथ उठाओ। आसान तो कुछ ने समझा पर करने में हम पीछे रह गए। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। सहज है, लेकिन सहज उनके लिए ही है जिन्होंने अपना लाइफ स्टाइल ये बना लिया है, मैं समर्पित हूं, बाबा के घर में रहती हूं, लेकिन मेरी दिनचर्या कैसी है, दुनिया जैसी। रात को 10-11 बजे तक जाग रही हूं, मोबाइल में या दूसरी दूसरी बातों में हूं, तो सवेरे कितने बजे उठूंगी जब मैं 11 बजे सो जाऊंगी? तो पता है ना कितने बजे उठेंगे, मुश्किल से 5-6 बजे। बाबा ने जो कहा है अमृत वेला, उसका क्या हाल चाल है? अमृत वेला पावरफुल हो, बैठूं ऐसा अलर्ट होके, सिद्धि प्राप्त करने के लिए कम से कम मैं 2 बजे नहीं तो 3 बजे उठकर बाबा की याद में बैठूं। बाबा ने तो हमें निर्विघन का वरदान दिया है, निर्विघन भव, लेकिन हम सब क्या कहते हैं, बहन जी विघ्न ही बहुत आते हैं, कभी साथी के, कभी अड़ोसी पड़ोसी के, कभी बीमारी के, कभी संस्कारों के, कभी पैसे के, कितने विघ्न आते हैं, हमारी सारी एनर्जी उसमें जा रही है विघ्न मिटाने में। बाबा ने हमें वरदान दिया है निर्विघ्न और साथ में विघ्न विनाशक भव। मैं निर्विघ्न भी रहूं और केवल अपने नहीं दूसरों के भी विघ्न विनाश कर सकूं, तो मैं तो अभी अपना ही विनाश नहीं कर रही तो दूसरों के कैसे करेंगे। तो हमारे अंदर ये निश्चय चाहिए और ये निश्चय हमारा तभी होगा पक्का, प्रैक्टिकल में तब आएगा जितना हम साइलेंस में रहेंगे। माया को पता है, बाबा ने बच्चों को कहा है साइलेंस में रहो, तो बाबा कई बार मुरली में कहते हैं माया भी जानी जानन हार है, वो वैसा ही आपके सामने आकर्षण लाके रखती है ताकि आप बाबा की आज्ञा का पालन न कर सकें। बाबा कहता है बच्चे क्या करो, साइलेंस में रहो, तो माया ने हम सबको एक खिलौना दे दिया, फोन, सारा टाइम लगे रहते हैं उसी में, बाहर मुक्ता, किसी को मैसेज भेज रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, नहीं तो उसी में पता नहीं क्या क्या ढूंढते रहते हैं। अंतर्मुखी बने, अंतर्मुखी माना ऐसे यहां से चुप रहना नहीं है, अंतर्मुखी माना मेरी सर्व कर्म इंद्रियां, आंख नाक मुंह सब बाहर की दुनिया में कुछ ना ढूंढे, अपने भीतर की दुनिया में जाए, सुनूं तो एक बाबा की सुनूं, देखूं तो एक बाबा को देखूं, बात करूं तो एक बाबा से करूं, भोजन स्वीकार करूं तो मैं भोजन नहीं, बाबा कहता है आपने भोग लगाया तो वो भोग हो गया, ब्रह्मा भोजन हो गया। यहां मधुबन में तो देखो आपको सारा टाइम ब्रह्मा भोजन मिलता है, क्या हम महसूस करते हैं कि मैं सौभाग्यशाली आत्मा 3 दिन 5 दिन यहां रहूंगी रहूंगा और मुझे ब्रह्मा भोजन जिसके लिए देवताएं भी तरसते हैं, क्या मैंने इस ढंग से स्वीकार किया, या अच्छा क्या बना, नहीं मेरे को दाल नहीं चाहिए, वो ठीक है आपको जो नहीं चाहिए, लेकिन नहीं ये तो मुझे पसंद ही नहीं है। योग हमारा बाबा से कैसे जुटे, अंतर्मुखी हर बात से, बाबा का जो ब्रह्मा भोजन हमें मिला, बाबा को भोग लगाया ना वो ब्रह्मा भोजन हो गया, बाबा ने स्वीकार किया है, चलो तबीयत अनुसार मुझे आलू नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, वो ठीक है, पर मुंह क्यों बनाना है, प्रसन्नता से लीजिए। खाना खाएंगे ना थकेंगे, आइए खाना खाएं, कहते मन तो नहीं है बिल्कुल, पेट भरा हुआ है, चलो आप कह रहे हैं तो खा लेते हैं, अब आप बताइए, आप कहते हैं तो खा लेते हैं, तो ऐसी क्या जरूरी है, मत खाइए ना, लेकिन मुंह बनाया, आपने देखिए वो ब्रह्मा भोजन में कौन से वाइब्रेशन डाले, भोजन जरूरी नहीं है, भूख है तो जरूर खाइए, नहीं है तो जबरदस्ती मत खाइए, लेकिन अपना दिल दिमाग मन बुद्धि इसको शुद्ध शांत रखिए। जो हम हमेशा हंसते हैं, लोग हमें क्या कहते, कहते ये ओम शांति वाले हैं, कहते हैं ना लोग ऐसे ओम शांति वाले हैं, हम भी एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं ओम शांति, लेकिन प्रैक्टिकल में हम क्या हैं, ओम शांति या ओम अशांति, कहां कदम कदम पर हम अशांत हो रहे हैं। ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अरे जल्दी चलो जल्दी चलो। तो अभी दो दिन जो हम कह रहे हैं मौन में रहना है, अंतर्मुखी रहना है, तो ये जो हमारे अंदर हर कार्य करने की स्थूलता है ना, इस स्थूलता को समाप्त करना है। जाना है, हाँ जाना है। क्लास में चलना है, हाँ चलना है। चलो मैं थोड़ी लेट हो गई क्लास के लिए, अरे जल्दी चलो ना, बहुत देर हो गई। तो देर तो मैंने ही की है ना, अच्छा चलो देर हो गई, चलो शांति से चलो, शांति से पहुंच जाओ। मेरे अंदर की शांति डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी अंदर की शांति डिस्टर्ब हो गई तो मैं ओम शांति नहीं हूं, मैं तो ओम अशांति वाली हो गई। आप एक सप्ताह ये पुरुषार्थ कीजिए, क्या भी हो, जो बाबा कहता है अम्मा मरे तो हलवा खाऊं, बीवी मरे तो हलवा खाऊं, कुछ भी हो, कितना बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, मेरी कोई चीज ले जाए, मुझे शांत रहना है। प्रयास अलग बात है, शांत होकर प्रयास करना है। अगर हम सब बाबा के बच्चे, जितने हम यहां बैठे हैं आज, थोड़े से बच्चे भी, 5-10 बच्चे भी ये प्रतिज्ञा कर ले, कुछ भी हो मुझे आज से शांत रहना है, आप करके देखिए एक सप्ताह। चाहे कर्म करें, चाहे बैठें, चाहे किसी से मिलें, अंदर में भाव हर घड़ी ये रहे, भूले नहीं, मैं शांत, मैं शांत, मैं शांत। जब तक हमें शांति की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, योग लग ही नहीं सकता है। कई पूछते हैं, बहन जी योग तो लगाते हैं, आपने क्लास भी अच्छा कराया, बैठते हैं ना, लगता नहीं है। नहीं लगेगा, अभी इस क्लास के बाद भी कई यही कहेंगे। पहली सिद्धि ये है, मैं शांत माना शांत, शांत माना स्लो नहीं है, शांत माना लेजी नहीं है। भाव भावना शांत है, क्या कहते हो, मन उद्वेलित होता है। मन उद्वेलित होना माना मेरी जो भाव भावनाएं हैं उनमें हलचल है, ये मेरी भाव भावनाएं एकदम शांत, ये सिद्धि है। अरे टोली मिल रही है, चलो चलो जल्दी चलो, अरे इधर से आजा, मैं तेरे को आगे ले जाती हूं। शांत शांत होके खड़े रहो ना, बैठे रहो, सबने ले ली, बाद में आके मैं भी ले लूंगी, मिलेगा तो सबको। तो पहली विधि ये है, तभी का एक सप्ताह ये करके देखिए, आपकी कितनी बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। टेंशन क्या है, शांति ही तो नहीं है, शांत रहना। पर मैंने पहले ही कहा, लेजीनेस नहीं है, लेथार्जी नहीं बनना है, एक्टिव रहना है। भोजन की इच्छा हो तो ही करना है, वरना नहीं करना है। ऐसे नहीं, भोजन तो मन तो नहीं है, अच्छा क्या बना है, समोसा, चलो एक खा लेते हैं, ये नहीं करना है। शांत रहे, अपनी इन कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को शांत कीजिए। कल आप देख लेना, बाबा आएंगे 4 बजे से, आके भाई बहने बैठने लग जाते हैं, जगह रोकते हैं, 6 बजे भोग लगता है, आप देखिए कितना डेड साइलेंस, सब एकदम ऐसे हो जाते हैं। तो आप देखिए आपको अनुभूति कैसे हो रही है बाबा की, जब आप पहले ऐसे शांत हैं। अगर मैं मन से परेशान हूं, मुझे सिर, भाई सिर दर्द हो रही है, मुझे तो टेम्परेचर है, मुझे तो कमरे में ले चलो, मेरे को अनुभूति होगी। कहेंगे आई भी बाबा से मिलने, तबीयत ही ठीक नहीं थी, जो पाना था वो पा नहीं सकी। तो अपने आप को भाव भावनाओं से, विचारों से एकदम शांत करो। इसके लिए चलते फिरते अपने पर फुल अटेंशन, लगाम कस के रखो मन बुद्धि के, शांत रहना है। बाबा कई बार कहते हैं ना, जो बड़े बड़े तपस्वी मुनि होते हैं, थाली में जो एक बार डाल दिया बस खा लिया। ये तो अभी हमारी संख्या भाई बहनों की इतनी बढ़ गई है, तो सिस्टम है, आप जाते हैं भोजन लेते हैं, फिर कम किसी को और चाहिए, दूसरे को कहते हैं या खुद उठ के जाते हैं, मुझे एक रोटी और दे दीजिए, दाल दे दीजिए। हम लोग जब शुरू शुरू में बाबा के बने और बाबा के घर में आते थे, चाहे ऊपर मधुबन में रहते थे, बस अपनी थाली में एक बार डलवाया, मुझे दो रोटी खानी है, तीन, एक ही बार लेते थे, आराम से बैठ जाते थे। बार बार नहीं, अरे तुम जा रही हो ना, जरा मेरे लिए थोड़ी सब्जी ले आना, सब्जी आज बहुत अच्छी बनी है। भूख नहीं थी, टेस्ट किया अच्छी लगी, मेरे लिए थोड़ी सी और ले आना। ये कर्म इंद्रियों का आकर्षण है, मुझे जितना लेना है लिया, शांत होके खाया। तो सबसे पहली सिद्धि यही कीजिए। अगर हमें बाबा से आशीर्वाद लेना है, मैं पूछूंगी किस किस को आशीर्वाद बाबा का चाहिए, नहीं चाहिए, सर्दी में हाथ नहीं उठा रहे हैं, हा? माताएं, जिनको भी आशीर्वाद चाहिए, कल बाबा आएंगे ना, आएंगे तो क्या करेंगे, अभी से उसकी लगन में मगन हो जाओ, शांत हो जाओ, देखो बाबा को। आप जब शांत होंगे तब तो बाबा दिखाई देगा, नहीं तो कैसे दिखाई देगा। तो अपने संकल्पों को, अपनी भाव भावनाओं को शांत करें। कोई कोई कहते हैं, हम मधुबन गए थे ना, फिर हमने बाबा को वहां चिट्ठी लिख के बाबा के उस लेटर बॉक्स में डाली थी, बाबा मेरा मकान बन जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा धंधा हो जाए। बहन जी हो गया, अब मैं जब जाऊंगी ना मधुबन, तो मैं मधुबन में इतना जरूर करूंगी। प्यारे भाई बहनों, बाबा ये छोटी छोटी इच्छाओं के लिए नहीं आया है, वो तो अपने आप सब होता रहता है। बाबा हमारे मन बुद्धि के शुद्धिकरण के लिए आया है, हमारी झोली वरदानों से, पुत्रवान भव, धनवान भव, वो तो ऑटोमेटिक है, जैसे कहा ना, आम का पौधा लगाया, आम लगेगा ही लगेगा। जब आत्मा शुद्ध होगी, शांत होगी, बाबा से लगी हुई होगी, तो ये हमारी नंबर वन सिद्धि है। कौन सी सिद्धि है, चलते फिरते कर्म करते बुद्धि बाबा से लगी हुई है। हम अक्सर क्या कहते, भाई चलते फिरते तो बहन जी याद नहीं रहता, बाबा भूल जाते हैं, क्योंकि हम और आकर्षणों में होते हैं, बात का आकर्षण, काम धंधे का आकर्षण, शॉपिंग का आकर्षण, खाने पीने का आकर्षण, अनेक प्रकार के आकर्षणों में आकर्षित रहते हैं, लेकिन बाबा मेरा साथी है भूल जाते हैं। इस बार हमें यही बाबा के घर से वरदान, यही सिद्धि लेनी है, मन बुद्धि एकदम शांत है, बाबा मेरे साथ है, हर श्वास में मुझे अनुभव हो, जो भक्ति में कहा है ना, श्वासों श्वास मेरा सिमरण कर। बहुत से भक्त लोग हैं वो श्वास के साथ भगवान का सिमरण करते हैं, जैसे श्वास लेंगे ना, उस श्वास के साथ करेंगे ओम, या उनका जो भी मंत्र होगा, श्वास छोड़ेंगे तो भी वही मंत्र बोलेंगे, तो समझते हैं मैंने श्वासों की सिद्धि प्राप्त की है, तो वो तो कितनी देर ऐसे जपेंगे, घंटा दो घंटा, फिर तो काम धंधे में जाना है। बाबा ने हमें कहा चलते फिरते याद करो, मुझे साथी बनाओ। तो हमें कोई श्वासों के साथ नहीं, लेकिन याद के साथ मेरे श्वास चले। उल्टा ये है, रिवर्स में चलेगी गाड़ी। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे वो हठ योगी एक्सरसाइज प्राणायाम आदि आदि करते हैं, जब वो सब पूरा होता है तो फिर उससे आगे हमारा राजयोग शुरू होता है। हम लोग थोड़ी ना हठ योग करते हैं, वो श्वास ऊपर नीचे ये नहीं करते हैं। जैसे संकल्प हमारे शांत होते हैं, भावनाएं हमारी शांत होती हैं, हमारे श्वास अपने आप ही शांत होते हैं। तो सारी जो चाबी है वो संकल्प है, भावना है, श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना, कोई दूसरी भावना नहीं आई। मेरी इसके साथ बनती है या नहीं बनती है, मुझे इससे कुछ लेना है या देना है, लेना देना दे के पूरा करो। नहीं बनती है कोई बात नहीं, उसको भी शुभ भावना दो। अपने आप से पूछो, सत्युग में चलना है? सत्युग में किस किस को चलना है? भगवान की गाड़ी चल रही है, बैठ जाओ, नहीं तो रह जाओगे, गाड़ी चली जाएगी। तो अगर मुझे सत्युग में चलना है तो मुझे एक बाबा की ही भावना में रहना है। बाबा मेरा है, मैं बाबा की। अपने आप अंतर्मुखी, तो स्वाभाविक पुरुषार्थ हो सिद्धि है। मेरा पुरुषार्थ स्वाभाविक हो। कई बार भाई बहन पूछते हैं, बहन जी हमने क्लास सुनी थी, बाबा की मुरली सुनी थी, बाबा ने कहा था, मधुबन में गए थे, फलाने ने क्लास कराई, मुझे बहुत उमंग आया, आके भी मैंने बहन जी एक महीना तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, फिर हमारा पुरुषार्थ ढीला हो गया। क्यों ढीला हो गया? आपने और किसी बात में तो कहा नहीं हम ढीले हो गए। मधुबन गए थे तो भी खाना खाया, वापिस आए तो भी खाते हैं, उसमें तो हम ढीले नहीं हुए। सोते हैं, आराम करते हैं, उसमें तो हम ढीले नहीं हुए। किसमें ढीले हुए? किसमें ढीले हुए? पुरुषार्थ में। क्यों? क्योंकि खाना पीना सोना घूमना फिरना ये हमारा नेचुरल नेचर है। पुरुषार्थ को हमने नेचुरल नेचर नहीं बनाया है। हम कहते हैं पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ करना नहीं है। पुरुषार्थ ही ब्राह्मण का जीवन है। आगे बढ़ने का, हिम्मत का, ताकत लेने का साधन पुरुषार्थ ही है। सब कुछ छूट सकता है, लेकिन ज्ञान योग का अभ्यास पुरुषार्थ ये नहीं छूट सकता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। कहते हैं अभ्यास करते करते तो मूर्ख भी समझ जाता है, सीख जाता है। तो बाबा ने जो मुझे होमवर्क दिया है, बच्चे श्वासों श्वास याद करो, मैं इसमें कहां तक पहुंची हूं। हर श्वास में आपका चाल ही बदल जाएगा। आप करके देखिए जरा, अभी दो दिन तो मधुबन में है ना, आज और कल। हर श्वास के साथ बाबा, आप देखिए आप में कितनी धैर्यता आएगी, नंबर एक, और कितनी आपके अंदर एनर्जी आएगी, क्योंकि अब आपका अटेंशन किस बात पर है कि मुझे श्वासोश्वास बाप को याद कर। जैसे वो कई कहानियां सुनाते हैं ना, राजा जनक के पास भी कोई गया तो पूछा, भाई आप कैसे जो है साक्षियों के कर्म करते हैं। उसका पेपर लेने गए थे साधु रूप में, तो उसको घी का कटोरा हाथ में दे दिया, और कहा सारा महल देख के आओ, और कहा अगर घी की एक बूंद भी गिरेगी तो मेरे सिपाही साथ रहेंगे, हाथ में तलवार होगी, आपका गला काट देंगे। अब बताइए वो महल देखेगा कि घी के कटोरे को देखेगा। तो जब वो पूरे महल का चक्कर लगा के आया, राजा ने पूछा भाई कैसा लगा मेरा महल? कहा अरे महल क्या देखना था, मेरा तो यही ध्यान रहा एक बूंद भी घी गिर ना जाए, नहीं तो तलवार सिर पे लटक रही है। तो इसलिए हमारा अटेंशन भी घी की बूंद, घी तो वैल्यूएबल चीज है ना, पानी तो हम यूं ही फेंक देते हैं, घी दूध हो तो फेंकते हैं, कहते हैं अरे संभाल के रखे एक बूंद भी टपकनी नहीं चाहिए। वो चम्मच से अगर घी लगा हुआ हो तो उसको भी हम पोंछ लेते हैं रोटी से अच्छी तरह से, घी है। एक भी मेरा श्वास आ रहा है, ये श्वास कहां चिपका हुआ हो? बाबा की याद में। एक भी श्वास मेरा बाबा की याद के बिना ना जाए तो सिद्धि ये लेनी है, शांत रहना है और एक भी श्वास बाबा की याद के बिना ना जाए। तो मैं सोचती हूं, समझती हूं कि आप ये दो दिन आज और कल ऐसे ही फुल अटेंशन से, शांति से, जितना शांत रहेंगे अपने आप योग लगाना नहीं पड़ेगा। आप कहेंगे ये तो कमाल हो गया, आज भी बाबा ने कहा ना मैं जादूगर हूं, सबसे बड़ा जादू ये है, शांत रहो, बाबा को साथी बनाओ। तो आज आपको जादू की चाबी छड़ी मिल गई, कैसे बाबा को साथी बनाना है, कैसे सहज बाबा को याद रखना है, हर घड़ी अपने पर अटेंशन। आप दादियों को याद करो, दादी जानकी को तो लेटेस्ट में सबने देखा होगा, सुना होगा, दादी हर घड़ी अपने पर। एक बार दादी हमारे पास जयपुर में आई थी तो कुछ अखबार वाले आए दादी से इंटरव्यू लेने, कहा हम दादी से मिलेंगे भी, बड़ी बड़ी अखबारों वाले थे दो तीन, दादी आई उनसे मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा दादी हम ना आपसे कुछ पूछेंगे, दादी ने कहा अच्छा पहले ना दो मिनट शांति में बैठो, मैं भी पहले शांति में बैठती हूँ फिर आप जो पूछेंगे जवाब देंगे। और हम तो क्या कहते हैं, अच्छा हाँ जी पूछिए, दे अभिमान है ना, पूछिए आपको जो पूछना है मैं आपकी हर बात का जवाब। दादी ने ये नहीं कहा, दादी ने कहा मैं भी शांति में आप भी शांति। ऐसे दादी 5 मिनट, मुझे तो लगा भी कि ये बड़ी बड़ी अखबार वाले हैं कहीं, उनको था जल्दी जाना है जल्दी, वो भी ऐसा शांत हो गए एकदम। और फिर जो कुछ पूछा ना दादी एकदम कहती थी देखो बाबा ऐसे कहते हैं, इतना स्वरूप में स्थिर होकर दादी ने हर चीज का जवाब दिया, कितने खुश होके गए। तो ऐसा नहीं है हमें तो काम करना है, हमारी तो जिम्मेवारियां हैं, मम्मा बाबा से ज्यादा जिम्मेवारी हमारी है क्या, दादियों से ज्यादा जिम्मेवारी हमारी है क्या? हम तो 2-4 के परिवार को चलाते हैं, हमारी दादियों ने तो इतने बड़े ब्राह्मण परिवार को विश्व भर को चलाया, लेकिन कैसे चलाया? कोई भी एक छोटी सी स्टेट को चलाने के लिए, स्टेट तो छोड़िए एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए भी कितने IAS वगैरह वगैरह लगते हैं, RAS लगते हैं, तब वो उसको सारा मैनेज करते हैं। और इतना बड़ा बाबा का घर, इतने ब्राह्मण, कितने IAS और RAS यहां पर हैं, IPS है, कोई पुलिस वाला यहां चल रहा है आपको रोकते हैं क्या? ये क्या चीज है? ये है परमात्म शक्ति। तो सबसे बड़ी सिद्धि मेरे अंदर परमात्म शक्ति रहे। बाबा आपको परमात्म शक्ति का वरदान दे रहा है, आप सोचिए जिसको ये मिल जाएगा वो तो कैसा रहेगा, बस कोई बुलाएगा तो भी कहेगा, क्योंकि परमात्म शक्ति मिल रही है, वो गवाना नहीं चाहता है। तो आप सब बाबा के बच्चे परमात्म शक्ति का आवाहन कीजिए, शांति में रहिए, अपने आप को भरपूर करें, संपन्न करें। नया वर्ष आने वाला है, कल बाबा भी आने वाला है, तो पुनः नए वर्ष की भी और सिद्धि प्राप्त करने की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई बधाई बधाई। तो चलो चलें, अभी सब अलर्ट होके बैठना। देख लो अगर आपके पास कोई आसपास थोड़ा आलस में पड़ा हो तो उठा देना, और चलिए सब जहां भी हैं, चाहे नीचे चाहे कुर्सी पर, सब एकदम अलर्ट होके बैठो। आपके हाथ में जो कुछ भी है सब छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए मैं आत्मा बाबा के सामने।